विद्यापति की विरहिणी राधा। प्रथम दर्शन में ही विद्यापति आश्चर्यचकित से दिखाई देते हैं। छूटते ही बोल उठते हैं, वह देखो राधिका का वह अपार रूप देखो। इस पृथ्वी तल पर न जाने विधाता ने किस लावण्य का सार ला उपस्थित किया है। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के विहि आन मिलावल खेती तले लाव निशार। विद्यापति इस रंगिणी के चरण तल पर सौ सौ लक्ष्मियों को निछावर कर सकते हैं। ऐ मन, इस चरण कमल की अभिलाषा किए रह, अगोरता रह उनके कृपा कटाक्षों को। कत कत लखी में चखतल नेऊ, छय रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाषा मन ही पद पंकज, अह निसिकोर अगोरी। सचमुच ब्रज लाडिली का यह सौंदर्य ऐसा ही है। शैशव और यौवन दोनों मिल गए हैं, आँखों ने कान पर रास्ता ले लिया है, वचन में चातुरी आ गई है, रह रह कर मंद स्मृति बिखर रही है, पृथ्वी पर आसमान का चांद प्रकाशित हो गया है। शैशव यौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लील, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद करल परगास। विद्यापति इस अपूर्व वयह संधि का वर्णन करती थकते ही नहीं, और सच पूछिए तो वह है ही ऐसा। किछु किछु उत्पत्ति अंकुर भेल, चरण चपल गति लोचन लेल, अब सब खन रहु आचर हाथ, लाजे सखीगण ना पूछे ये बात। अब भेल यौवन बंकिम दीठ, उपजल लाज हास भेल मीठ। यही कुसुम कोमल बाल किशोरी जब ब्रज चंद के नवानुराग में कातर हो उठती है, सहृदय का हृदय पिघल जाता है। माधव पहले से ही राधिका की ओर आकृष्ट है, राधिका भी उनकी ओर आकृष्ट होती है। पहली बार श्री कृष्ण के रूप माधुरी देखकर वे मुग्ध हो जाती हैं। क्या बताऊं सखी, उस कान्हा का रूप, इस सपने के स्वरूप को पतियाएगा कौन। किसे यकीन होगा नए बादल के समान शरीर, पीत वस्त्र सौदामिनी की रेखा के समान झलक रहा था। श्यामल वर्ण था, कुंचित केश थे, जान पड़ता था काजर में मदन ने ही अपना सुंदर वेश साज रखा था। कि कहब हे सखी कानुक रूप, के पतियायत सपन स्वरूप, अभिनव जलधर सुंदर देह, पीत वसन पर दामिनी रे, सामर झामर कुटलही केश, काजर साजन मदन सुवेश। राधिका की बड़ी इच्छा थी कि वे कान्हा को देखें। अवसर आया और उन्होंने देखा, पर हाय, मुग्धा राधिका को क्या मालूम था कि यह देखना विषम वेदना का कारण हो जाएगा। अबोधा राधिका, वे समझ ही न सकी कि क्या कहना है और क्या सुनना चाहिए। सावन की झड़ी के समान दोनों नयन बरसने लगे, हृदय निरंतर धड़कने लगा। हाय, राधिका ने भगवान को देखा ही क्यों, अब तो मन दूसरे के हाथ चला गया। न जाने कैसा चोर है वह मोहन, देखने वाली का चित्त ही चुरा ले गया। कि राधिका जितना ही भूलना चाहती है उतना ही वह नहीं भूलना चाहता। विद्यापति आश्वासन देकर कहते हैं कि हे वरनारी, मुरारी मिलेंगे। कानु हेरब छल मने बड़ साध, कानु हेरायत भेल परमाद, ताधरी अबोध मुगुध हम नारी, की कही की सुनी किछु बुझई न पारी। सावन घन सम झरु न नयान, अविरत धस धस करय परान, का लगी सजली दर्शन भेल, रब से आपन जीव पर हाथ देल। न जानिय किय करु मोहन चोर, हेरित जान हेरी लई गेल मोर। इसके बाद राधिका ने भगवान को सैकड़ों बार देखा। दही बेचते समय रास्ते में भगवान के दर्शन हुए और वे चित्र लिखित सी खड़ी हो गई। न दही की सुधी न आंचल की, यमुना पुलीन की संकीर्ण पगडंडियों पर आंखें चार हुई और वे नयन तरंगे जन गले गेलहु सुनाई। अटूट मुग्धा वे फिर भी पूछती हैं, कौन यकीन करेगा कि ऐसा सचमुच हो जाता है, सारे नगर में क्या ऐसा कोई भी आदमी है तो राधिका की इस बात को विश्वास करेगा कि उस दिन वृक्ष तले जब कृष्ण मिले थे तो वे नयन तरंगों से नहा सी गई थी और देखते सुनते उनका हृदय उन्होंने हर लिया था। तरु तट भेटल तरुण कन्हाई, नयन तरंगे जनि गेलहु सनाई, के पतियायत नगर भरला, देखैत सुनैत हृदय हरला। निष्ठुर सखियां विश्वास ही नहीं करती, कब किसने दूसरे का दुख बांट लिया। निठुर सखी विश्वास न देई, परख वेदन पर बाटी न लेई। अंत में एक दिन भगवान मिले, यह विचित्र दशा थी। राधिका के मुंह से सुनना ही ज्यादा अच्छा होगा। उनके कहने से जान पड़ता है कि उस दिन उन्होंने मुख झुका लिया था, अपनी चारों आँखों को, अपनी चूर आँखों को रोक रखा था, फिर भी वे प्रियतम की ओर दौड़ पड़ी और जैसे चकोर चांद की ओर दौड़ पड़ते हैं, एक बार फिर जबरदस्ती उन्होंने उन आँखों को नीचे की ओर से झुका लिया था और सारी शक्ति लगाकर प्रियतम के चरण में बांध रखा था और सारी शक्ति लगाकर प्रियतम के चरण में बांध रखा था। मधुपान करते भौरा उड़ तो नहीं सका, मगर उसके पंख अवश्य फड़फड़ाए थे। माधव ने मधुर वाणी से कुछ कहना चाहा था, कहा भी था। राधिका ने अनुभव किया कि आनंद का इतना गुरुभार वे संभाल न सकेंगी। उन्होंने कान बंद कर लिया, मगर कर न सकी थी। पंचशर उनके विरुद्ध था, शरीर से पसीना तर तर चूने लगा था, रोमांच से देह यष्टि कंटकित हो गई थी, कंचुकी दरक उठी थी, हाथ कांपने लगे थे, शब्द गायब हो गए थे। अवनत आन कहे हम रही लहु, बारल लोचन चोर, पिय मुख रुचि पिए व धावल, जानी से चांद चकोर। नतौ सौ हठे हठी मोजे आनत, धैल चरण राखी, मधुक मातल उड़ई न पाए, तैयो पसारे पाखी। राधिका के प्रथम मिलन का यह विषम अनुभव था। इसके बाद बहुत दिनों तक फिर प्राण प्यारे का दर्शन नहीं हुआ। वियोग की वे घड़ियां असहाय थी, मगर नवानुरागिणी की लज्जा उसे संभालती रही। कुछ सखियों के उद्योग से, कुछ अपनी तपस्या के फल से, कुछ नटनागर की आकुलता से सीख रही दोनों प्राणी मिले और यमुना का केल पुलिन धन्य हो गया। मगर राधिका इस विलास विभ्रम में भी अंत तक मुग्धा किशोरी ही बनी रही, इसका यह उत्तम अंश है। पनघट पर युगल मुत्ती को देखकर यमुना उद्वेल हो उठी है। कदम्ब तले देख कर वनस्थली आत्म स्मृति से डूब जाती है। गोकुल की अंधेरी गलियां काले प्रकाश में चमक उठती हैं। चंद्रमा को अपना रूप सार्थक जान पड़ता है। वसंत अपनी नवीनता का सच्चा आनंद पाकर धन्य हो जाता है। वर्षा अपनी प्रफुल्ल यौवना देह यष्टि से लोटपोट हो जाती है। शरद काश हास से तरंगित हो जाती है। दुनिया में जो जहां है वह वही अपना जन्म सफल मानता है। ऐसी है वह राधा माधव की प्रेम केली। अकस्मात एक दिन राधिका सुनती है कि प्रिय वियोग प्रायः निश्चित है। राधिका व्याकुल हो उठती है। हाय सखी, बालम विदेश जीतना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कहना तो अमंगल सूचक शब्द है। राधिका इसका प्रयोग नहीं कर सकती। कैसे रोकूं, मैं कुल कामिनी हूँ, उनको रोकना तो अनुचित है। तू ही समझा देना बहन, यह विदेश का समय नहीं है। वह निष्ठुर मेरा दुख तो समझेगा नहीं, समझा दे सकी कि कुछ दिन यही रहे। मगर राधिका की हृदय व्यथा क्या सखी कह सकेगी। कुल कामिनी राधिका को संकोच छोड़ना पड़ा, भगवान के पास स्वयं ही गई और बोली, प्यारे अगर विदेश जाना ही चाहते हो तो मेरा उपदेश सुनो। यदि भौरे गूंजने लगे, यदि कोकिल पंचम तान छेड़ दे, तो अनुमान कर लेना कि वसंत आ गया है, वरन अपने कान मूंद लेना। उस समय प्यारे अपना प्राण रखना और मुझ प्यासी को भी जल देना। प्यारे जब तुम घर से बाहर रास्ते के उस वन में पहुंचोगे, उसी समय मुझे भूल जाओगे। हीरा मणि माणिक्य मैं कुछ भी नहीं चाहती, प्यारे मैं तो तुम्ही को चाहती हूँ। मगर कृष्ण ने सुना नहीं, वे चलने को तैयार बैठे थे। उस विदाई रात्रि का वर्णन विद्यापति कर ही नहीं सकते। राधिका कान के मुख को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी, आंखों में झरझर झरझर अश्रुधारा झड़ पड़ी। भगवान ने चलने की अनुमति मांगी और विधुवदनी राधिका हरी हरी कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। व्याकुल प्रियतम ने क्या क्या कहकर प्रबोध नहीं कराया, पर हाय मर्म की पीड़ा भी उन प्रबोध वाक्यों से दूर हो सकती थी। अंत में माधव ने कहा, मैं अब मथुरा नहीं जाऊंगा। इस पर राधिका को चेतना हुई। सावधानी से कान्हा के दोनों हाथों को राधिका ने अपने कोमल हाथों में लिया और सिर पर रखा। तब समझाकर वह नागर कृष्ण ने कहा, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। प्रियतम के इस आश्वासन से प्रिया आश्वस्त हुई और दीर्घ निश्वास छोड़कर बैठ गई। जिस प्रकार भगवान ने राधिका का प्रबोध किया, वह विद्यापति कह नहीं सकते। कान मुख हेरे इति भावनी रमणी, फुक रई रोयत झर झर नयनी। अनुमति मांगिते वर विधु वदनी, हरि हरि शबदे मुरछि पड़ धरनी। आकुल कत पर बोधय कान, अब नहीं माथुर करब पयान। इह वर शबद पशल जब श्रवने, तब विरहिनी धनि पावल चेतने। निज करे धरि दुहु कानुक हाथ, यतने धरल धनि आपन माथ। बुझिए कहे वर नागर कान, हम नहीं माथुर करब पयान। राधिका तुम भूल रही हो, किसी ससीम ने असीम को रखा है। काया ने प्राण को रोक रखने के लिए अनादिकाल से अनंत प्रयत्न किया है, पर प्राण ने कब सुना है। प्राण कहे सुन काया मेरी, अब हम मिलन न होए। तुम सम मीत बहुत हम की ना, संग न लीना कोए। हे जगद बंधे, हम तुम्हारे विरह दुख की गंभीरता का अनुमान करने में भी असमर्थ हैं। तुम वह ध्रुव तारा हो, जिसका अनुसरण करके अनंत काल तक राहगीर अपना रास्ता तय करेंगे, पर प्रेम के सर्वग्रासी प्रवाह में पड़कर तुम अपना ही रास्ता न पा सकी। हाय किस गंभीर दुख से मग्न है यह सारा आकाश, यह सारी पृथ्वी। जितने दूर चलो एक आवाज सुनी पड़ेगी, मैं जब तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। धरणी के इस प्रांत से लेकर नीलाभ्र के उस प्रांत तक एक ही अनाद्यंत आवाज ध्वनित होती है, नहीं जाने दूंगी। सबका यही कहना है, नहीं जाने दूंगी। वह दीप शिखा आयु छीण होकर अब बुझी तब बुझी की अवस्था तक पहुंच गई है, फिर भी अंधकार से न जाने कौन सारी शक्ति लगाकर खींचता हुआ कह रहा है, नहीं रे, नहीं जाने दूंगी। इस अनंत चराचर में स्वर्ग से मर्त्य तक सबसे पुरानी बात, सबसे गंभीर क्रंदन यही है, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। फिर भी जाने देना होता है, फिर भी जाने वाला चला जाता है। अनादिकाल से यही होता चला आ रहा है। प्रलय समुद्रवाही इस सृजन स्रोत में व्यग्र बाहु फैलाए हुए जलती आंखों से नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी कहते कहते हूँ हूँ करके तीव्र वेग से इस विश्व तट को आत्म कलरों से पूर्ण कर सभी चले जाते हैं। सामने की लहर से पीछे की लहर चिल्ला कर कहती है, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मगर कोई नहीं सुनता, कोई जवाब नहीं देता। की गभीर दुखे मग्न समस्त आकाश, समस्त पृथ्वी चली तेछ जत दूर। सुनी तेछी एकमात्र मर्मांतिक सूर, जेते आमी देव ना तो माए धर नीर। प्रांत हते नील भेर सर्व प्रांत तीर, ध्वनि तेछे चीर काल अनाद्यंत रवे। जेते नाही दीप, जेते नाही दीप, सभे कहे जेते नाही दीप, त्रिड छुद्र अति तोरयो बांधिया वछे माता वसुमती, कही छेन प्राण पने जेते नाही दीप, आयु छेड़ दीप मुखे शिखा नीब नीब, आंधा रेर ग्रास हते के टानिछे तारे, कही तेचे सत बार जेते दीप नारे, ए अनंत चराचर स्वर्ग मर्त्य छे, सब छे पुरातन कथा जब सब छे, गभीर क्रंदन जेते नाही देव हाय, तुम्हें जेते दिए है तब तबु चले जाए, चली तेछे ए मनि अनादिकाल हते, प्रलय समुद्र बाहि सृजनेर स्रोति, प्रसारित व्यग्र बाहु ज्वलंत आखिते, दीब ना जेते डाकिते डाकिते, हूँ करे तीव्र वेग चले जाए सबे, पूर्ण करी विश्व तट आत कल रवे, सम्मुख उमीरे डाके पश्चातेर ढीव, दीब ना जेते नाही सुने केऊ नाही कोनो साणा। रविंद्रनाथ जी का ये है। राधिका की सारी आशा आकांक्षाओं की अपेक्षा करके भगवान भी चले गए। कृष्ण राधिका के विरह को अनुभव न कर सके। काश राधिका की इच्छा पूरी हो जाती, मगर मरकर दूसरे जन्म में कृष्ण होती और कृष्ण राधिका होते तो संभव है कि उस विरहणी की व्यथा अनुभव कर सकते। कल ही शाम को प्रिय ने कहा था, मैं मथुरा जाऊंगा, मैं अभागिनी समझ ही नहीं सकी, नहीं तो साथ ही योगिनी बनकर चली जाती। हाय मेरा हृदय कितना दारू है, जो प्रिय के बिना अब तक फट नहीं गया। काली कहल पिया ए सांझ हीरे, जाय मोए मारो देश, मोए अभागिन नहीं जानल रे, संग जईतौं जोगी नवेश, हृदय बड़ दारुण रे पिया बिनु बिहरी न जाए, पर हाय कृष्ण नहीं माने चले गए। उस समय राधा की अवस्था विद्यापति के शब्दों में, एक सयन सखी सूतल रे, आछल बाल मुनिसी भोर, सुनु सेज हिया सालय रे, प्यारे बिन घर मोए आजी, विनती करऊ सहेलनी रे, मोहि देह आगी रह साजी। राधिका के इस प्रथम विछोह की घड़ियां बहुत दारू हैं। इसी विछोह के लिए राधिका ने क्षण भर के लिए भी भगवान को दोषी नहीं ठहराया। उसके प्रियतम विदेश चले गए, कोई भी कुशल संदेश नहीं दे रहे हैं, इसके लिए राधिका किसकी निंदा करे, यह उन्हीं का अभाग्य है, प्रिय का दोष नहीं। श्री कृष्ण जैसे प्रिय ने भी पूर्व प्रीति विसार दी है, राधिका की समझ में यह बात आती है कि जब विधि वाम होता है तब सब विपरीत हो जाते हैं, मर्म की वेदना मर्म ही जानता है, दूसरे का दुख दूसरा नहीं जानता। हमर नागर रहल दूर देश, केऊ नाही कही सखी कुशल संदेश, ए सखी काही करब अपतोष, हमर अभागी पिया नहीं दोष, पिया बिसरल सखी पूरब पीरी, जखन कपाल वाम सब विपरीत, मर्मक वेदन मर्म ही जाने, आनक दुख आन नहीं जाने। राधिका कहती हैं कि इतने दिनों तक हर्ष था, अब सब दूर हो गया है, रंक का धन खो गया है, उसके लिए सारा संसार सूना हो गया है, न जाने निर्दय विधाता ने किस दोष के लिए यह दुख दिया है, जी में आता है विष खालू, पर आत्महत्या तो पाप है, मेरा जीवन मरण के समान जान पड़ता है और मरण परम सुहावना, मेरा दुख कौन पतियाएगा, किसे इसका यकीन होगा, एक दिन हृदय हरक छल आवे, सब दूर गेल रे, राकक रतन हेरायल जगते, ओ सुन भेल रे, विह निर्दय कौन दोसे देहु देल दुख, मनमथ रे मन कर गरल गरासिय पाप, आतंब बथ रे, जीवन लाग मरण सम मरण सुहावन रे, मोर दुख के पतियाए सुन विहरी विरही जन रे, विद्यापति कह सुंदरी मन धीरज धरु रे, आचिर मिलत तोर प्रियतम मन दुख परिहरु रे। फिर भी राधिका ने आशा त्यागी नहीं। हाय मगर यह आशा क्या कभी पूर्ण होगी, आंखें तो रोज ही भगवान के लिए दौड़ा करती हैं, मगर वे कहाँ आए शिव शिव, जीव भी तो नहीं जाता। आशा बस उलझा हुआ है, मन में आता है कि वहीं उड़ जाऊं जहां भगवान को पाया जा सके और उस प्रेम के स्पर्श मणि को पाकर हृदय में लगा लें। सपने भी संगम हुआ था, सपने में भी संगम हुआ था, रंग भी बढ़ाया था, मगर विधाता ने उसे भी नष्ट कर दिया। नींद खुल गई, फिर भी विद्यापति कहते हैं, हे सुंदरी धैर्य धरो, प्रियतम शीघ्र मिलेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा। लोचन धाये थे धायज हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवयो न जाय आसे अर झायल रे, मन करी ताहा उड़ी जाय जहाँ हरि पाई अरे, प्रेम परसमनी जाने आने उर लाई अरे, सपनहु संगम पाउल रंग बढ़ाओल रे, से मोर विहि विघटावल नींद ओ हिराओल रे, भनई विद्यापति गाओल धनी धैरज कर रे, अचिरे मिलत तेह बालम पूरत मनोरख रे। हे काले बादल, कसम कमल सूख गया है, भौरा अब नहीं आता, प्यासा पथिक पानी भी नहीं पाता, सरोवर दिन पर दिन छिछला हो जा रहा है, समय की अपेक्षा करके अगर तुम बरसे ही तो क्या और न बरसे ही तो क्या, दिन में दीपक की कौन सी जरूरत पड़ेगी, असमय की वर्षा व्यर्थ है, समय का एक चुल्लू पानी मूर्छित को जिला सकता है। कामल सुखायल भ्रमर नहीं आव, पथिक पियासल पानी न पाओ, दिन दिन सरोवर हुई आगरी, अब हूँ नहीं बरसे मई भाव वारी, मही भरी वारी, तही तो है बरसव समय उपेखी, की फल आओ दिवस दीप लेखी, भनई विद्यापति असमय वानी, मुरझुल जीवे चुरु एक पानी। हाय न जाने माधव कब तक मथुरा में रहेंगे, कब बाम विधाता का प्रकोप दूर होगा, दिन लिखते लिखते तो नख घिस गए, गोकुल का नाम भी भूल गया, हे हरि यह संवाद मैं किस से कहूँ, नेह का सुमिरन करते करते तो देह छीण हो गया है, अब कौन सी साध बच रही है, पहले तो मैं ही प्यारी स्त्री थी, अब दर्शन में भी संदेह उपस्थित हुआ है, भौरा भी तो सब कुसुमों में रमता हुआ भी कमलनी का स्नेह नहीं छोड़ता, मगर यह आशा लेकर कहाँ तक प्राण बचाऊं, वह तो अब भी प्रयाण कर रहा है, अभी फिर भी विद्यापति कहते हैं, हे सुंदरी धैर्य धरो कृष्ण मिलेंगे, हे सुंदरी धैर्य धरो कृष्ण मिलेंगे, कत दिन माधव रहब मथुरापुर, कभी घुचब विहि बाम, दिवस लिखी लिखी नखर खोआयल, बिसरल गोकुल नाम, हरि हरि काहे कहब इह संवाद, सुमिर सुमिर नेह खीन भेल मुझ देह, जीवने आशय किए साथ, पूर्व प्यारी नारी अहम आछल, अब दर्शनहु संदेह, भ्रमर भमय भमि सबहु कुसुम, रमि न तजय कमिलनी नेह, आश नियर कर जीव कत राखब, अबहि से करत पयान, विद्यापति कह धरज धर धनी, मिलब तुरत ही कान। हे सजनी तुम जाकर भगवान से समझा कर कह, प्रेम बीज का अंकुर रोप कर उसे तुमने मरोड़ डाला, वह किस उपाय से बचेगा, जल में जैसे तेल का बिंदु फैल जाता है वैसे ही तुम्हारा अनुराग फैलता है, और बालू में जैसे पानी गायब हो जाता है वैसे ही तुम्हारा दिया हुआ सुहाग। सजनी कानुक कह भी बुझाई, रोपी प्रेमक बीज अंकुरे, मोड़ ले बाँचव कौन उपाई, तेल बिंदु जस आनी पसारिये, एसन तुम अनुरागे, सिकता जल जस खनै सुखाए, तैसन ताहार सुहागे। कौन है जो राधिका की पत्रिका ले जाएगा, हाय इस सावन के महीने में हृदय का दुख सहा नहीं जाता, इस धरासार वर्षा के कठिन ऋतु में पिया बिना भवन में अकेली मैं नहीं रह सकती, कौन है सखी जो दूसरे का दुख पति आए, हरी मेरा मन हर कर मथुरा ले गए, उन्होंने गोकुल छोड़कर मथुरा में वास कर कितना अपजस दिया, फिर भी विद्यापति कहते हैं, हे सुंदरी धीरज धरो, तुम्हारा मन भावन इस कार्तिक में आ रहा है। के पतिया ले लय जायत रे मोर पियतम पास, हित नहीं सहाय असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोरा रहली न जाय, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। मोर मन हरी हरी लय गल गेल रे अपनो में मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बस रे कत अपजस लेल। विद्यापति ही गावल रे धनि धरु पिय आस, आवत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। हम धनी तापिनी मंदिरे एकाकिनी दोसर जन नहीं संग, बरिखा बर बिश पर बेस पिया गेल दूर देश रिपु भेल मत अनंग। वसंत आया चला गया, वर्षा आई निकल गई, शरद शुरू हुई समाप्त भी हो गई, शिशिर और हेमंत आए भी चले भी गए। अब फिर वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, राधिका के प्रिय नहीं आए। अंत में सखी भगवान के पास गई और बोली, हे माधव, वह कमल मुखी दिन रात नयन आश्रु की नदी में स्नान किया करती है, एक बार अगर वह तुम्हारी रूप सुधा को भर आंख पी ले तभी जी सकेगी। मुक्त कवरी उलटकर वक्ष स्थल पर लटक रही है, मानो स्वर्ण गिरी पर चामरी चर रही है। तुम्हारा गुण गिनते गिनते उसे नींद नहीं आती, वह सुंदरी मुख नीचा किए कितना रो रही है। विद्यापति कहते हैं कि हे वरकान, सुनो, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा हृदय पाषाण का है। लोचन नीर तटन निर्माने, तत ही कमल मुखी करत सिनाने, बेरी एक माधव तुअ राई जीवई, जो तौ रूप नयन भरी पीवई। फूल कबरी उलटी उर परई, जनि कनया गिर चामरी चरई। तू गुण गनैत नींद न होई, अवनत आनने धनिकत रोई। भनई विद्यापति सुन वर कान, बुझल तऊ हिया दारुन पसान। सखी ने राधिका की विरह वेदना नाना भांति से कह सुनाई। प्रेम में भगवान सुनकर बेहोश हो गए। अंत में सखा ने जो कहा वह विद्यापति की शब्दों में सुनिए। माधव देखल वियोगिनी वामे, अधर नहास विलास सखी संग निस दिन जपे तुअ नामे। आनन शरद सुधाकर समतसु, बोल मधुर धुनि बानी, कोमल अरुण कमल कुम्हलायल, देखि मन आई तहु जानी। हृदय हार भार भेल सुवदनि, नयन न होय निरोधि, सखी सब आय खिलावल रंग कर, तसु मन किछु न बोधे। रगड़ल चानन मृग मद कुमकुम, संभत जलितु लागी, जनि जल हीन मीन जक फिर इच, अहि निस रही इच जागी। दूती उपदेश सुनी सुनी सुमिरल, तैछन चलल धाई, मूदवती पति राघव सिंह, गति कवि विद्यापति गाई। और माधव ने कहा ओह वह रामा, उसे क्या भूला जा सकता है। हाथ पकड़कर जब मैंने मथुरा जाने की अनुमति मांगी थी, वह उसी दम मूर्छित हो गिर पड़ी थी। गदगद स्वर में, टूटे अक्षरों में उस श्रेष्ठ रामा ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर मैं चला आया सो इस कठिन कलेवर के कारण। मगर चित्त तो वहीं रह गया, उसके बिना न रात अच्छी लगती है न दिन। अन्य रमणियों के साथ राज संपत्त के साथ होते हुए भी मैं वैरागी के समान जीवन व्यतीत करता हूँ। रामा हे से किय बिसैल जाई, करे धरी माथुर मनुमति मंगईते, तत ही पड़ल मुरछाई। किछु गद गद से लहु लहु आखरे, जे किछु कहल वर बामा, कठिन कलेवर तज चली आयल, चित्त रहल सोई ठामा। से बिनु राति दिवस नहीं आवत, नहीं भावहि तहि रह मयम लागी। आन रमनी संगी राज संपद, मोजे आछे जैसे बैरागी। सखी ने राधिका से आकर बताया कि माधव दो चार दिन में आने वाले हैं। ये दो चार दिन राधिका के कैसे कटे यह बता सकना कठिन है। हृदय धन के भविष्य मिलन के भाव लस नए नए मंसूबे नई नई कल्पनाएं राधिका के ही योग्य हैं। एक बार वे सोचती हैं भगवान के स्वागत के लिए मोतियों का चौक पूरेंगी, फिर सोचती हैं मान कर लेंगी, कुछ भी नहीं बोलेंगी। ज्यों ही रसिक राज आंगन में आएंगे मैं जरा सा हंस कर लौट जाऊंगी, प्रिय आवेश में आकर मेरा आंचल पकड़ लेंगे। आंगने आव अब जब रसिया, पलट चलब हम ईसत हसिया, रम नागरी रमनी कत बहु जुगते मन ही अनुमानी, आवेशे आचर पिया धरबे जाव अब हम नतन बहु करबे। आज बहुत दिनों के बाद माधव राधिका के घर आए हैं। वसंत ने जितना दारुण दुख दिया था वह सब प्रियतम का मुख देखकर दूर हो गया। भगवान की कृपा से मेरे हृदय की सारी साध मिट गई, सरस आलिंगन से शरीर पुलकित हो गया, अधर सुधा के पान से विरह ज्वर दूर हो गया। अब कोई व्याधि नहीं है, समुचित औषध मिलने से कभी व्याधि रहती है। कि कह भे सखी आनंद ओर, चीर दिने माधो मंदिरे मोर, दारुण वसंत जत दुख देल, पिय मुख हेरे इत सब दुख गेल, जतहू अछल मोर हृदय एक साध, से सब पूरल हरि प्रसाद, रभस आलिंगने पुलकित भेल, अधरक पाने विरह दूर गेल, भनहि विद्यापति आर नहीं आधी, समुचित औषधि ना रहे ब्याधि। आज मैंने सौभाग्य से रात काटी, प्रिय मुख चंद्र देखा, आज मेरा जीवन और मेरा यौवन दोनों सफल हो गए, दसों दिशाएं आज निर्द्वंद हैं, आज मेरा घर घर है, मेरी देह देह है, आज ब्रह्मा मेरे अनुकूल है, सब संदेह टूट गया है। आज रजनी हम भागे गमावल, पेखल पिय मुख चंदा, जीवन यौवन सफल करी, मानल दश दिश भेल निर्दंदा, आज मझू गेह गेह करी मानल, आज मझू देह भेल देहा, आज वही मोहे अनुकूल होयल, टूटल सब संदेहा। ए सखी तू मेरा अनुभव क्या पूछ रही है, वही प्रीति है वही अनुराग है, जो तिल तिल नूतन हो क्षण क्षण यवनाम यन्नवतामुपेती। मैंने सारे जीवन उस रूप को देखा है पर नयन तृप्त नहीं हुए, जो मधुर बोल बराबर सुनती रही वह श्रुति पथ के लिए अब भी नए हैं, वे अब भी श्रुति पथ को स्पर्श नहीं कर सके, किंतु मधु यामिनी अंदर से काट काट दी पर समझ सकी कि केली क्या चीज है। लाख लाख युग तक हृदय में धारण किए रही पर हृदय जुड़ नहीं सका। विदग्ध तो कितने ही हैं जिन्होंने रस का अनुमोदन किया है पर अनुभव किसी ने नहीं देखा। विद्यापति कहते हैं कि हृदय जुड़ जाता है यदि करोड़ों में एक भी अनुभव करता। सखी की पूछसी अनुभव मोई, सेहो पीरित अनुराग बखानिय, तिले तिले नूतन होई, जन्म अवधि हम रूप निहारनु, नयन न तिरपति भेल, सेहो मधुर बोल श्रवण ही सुनल, श्रुति पथे परश न गेल, कन मथु यामिनी रभ से गमाओल, न बुझल कैसन केल, लाख लाख युग हिय राखल, तैबो हिय जुड़ल न गेल, कत विदगध जन रस अनुमोदई, अनुभव काहू न देखी, भने विद्यापति हृदय जुड़ाई, मिले कोटि में एक। विद्यापति की राधिका आरंभ से अंत तक मुग्धा किशोरी है, क्या पूर्वानुराग क्या मिलन क्या मान क्या वियोग, सर्वत्र उनकी शिकायत है कि कोई उनके प्रेम को पतियाएगा नहीं, कोई उनका दुख बांट नहीं लेता, हालांकि राह घाट गली कूचे सर्वत्र उन्हीं के प्रेम की चर्चा चल रही है। इस राधिका में प्रेम का वह रूप शुद्ध भाव से फूट उठा है जो प्रेम पात्र के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता। विद्यापति ने राधिका की जिस प्रेममय मूर्ति की कल्पना की है उसमें विलास कलावती किशोरी का रूप स्पष्ट ही प्रधान है, पर सर्वत्र उस विलास के पीछे यह भावना छिपी हुई है कि प्रिय इससे प्रसन्न हो। राधिका का रूप भगवान के लिए यौवन भगवान के लिए है, प्रेम भगवान के लिए है, विलास भी भगवान के लिए है। एक शब्द में उन्होंने भगवान की संतुष्टि के लिए विलास कलावती का रूप धारण किया। अगर भगवान किसी अन्य रूप से संतुष्ट होते हैं और राधिका को यह खबर लग गई होती तो वे निश्चय ही उस अन्य रूप को ही अपनाती। चंडीदास की राधा में मानस सौंदर्य अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। विद्यापति की राधा में शारीरिक शरीर सौंदर्य भी उसी प्रकार अपनी परिणति पर पहुंचता है। मगर यह कहना कि विद्यापति की राधिका में शरीर सौंदर्य ही प्रधान है अन्याय है। यद्यपि यह बात होती थी तो विद्यापति की साधना में रत्ती भर न्यूनता नहीं आती। असल बात यह है कि राधिका की सारी शरीर चेष्टाओं के भीतर भगवान को संतुष्ट करने की भावना है। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि आराध्य की संतुष्टि के लिए अपना सर्वोत्तम भेंट कर देना मानस सौंदर्य की पराकाष्ठा है।